श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय दो गजेंद्र का संकट। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत है। यह 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा है। चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा गिरे होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीक है। पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान 80,000 मील है। इसकी तीन प्रमुख चोटियां जो लोहे, चांदी तथा सोने की बनी है, सारी दिशाओं एवं आकाश को सुंदर बनाती हैं। पर्वत में अन्य चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण हैं और सुंदर वृक्षों, लताओं एवं झाड़ियों से अलंकृत हैं। पर्वत के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह सुहावनी है। इस प्रकार यह पर्वत सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है। पर्वत के तलहटी की भूमि सदैव दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है, जो आठों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाओं में मरकत मणियां उत्पन्न करती रहती है। उच्च लोकों के वासी सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, उरग, किन्नर तथा अप्सराएं इस पर्वत में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। इस तरह पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्ग लोकों के निवासियों से भरी रहती हैं। गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों के गायन की गूंजती हुई ध्वनियों के कारण वहां के सिंह, जिन्हें अपनी शक्ति पर गर्व है, असहय ईर्ष्या के कारण यह सोचकर गर्जना करते हैं कि वहां पर कोई अन्य सिंह वैसे ही दहाड़ रहा है। त्रिकुट पर्वत के नीचे की घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित हैं और देवताओं के उद्यानों में जो वृक्ष हैं, उन पर नाना प्रकार के पक्षी सुरीली तान से चहकते रहते हैं। त्रिकुट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीले हैं, जिनके तट बालू के कणों के सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके रहते हैं। उनका जल मणियों की भांति निर्मल है। जब देव ललनाएं उनमें स्नान करती हैं, तो जल तथा पवन उनके शरीरों से सुगंधि ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल और भी सुगंधित हो जाता है। त्रिकुट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नामक एक उद्यान था। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और यह देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं में फूल फल उगते रहते थे। इनमें से मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्र विशेष, पियाल, पनस, आम, आम्रातक, क्रमुक, नारियल, खजूर तथा अनार मुख्य थे। वहां पर मधुक, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष, उडुम्बर, प्लक्ष, बरगद, किंशुक तथा चंदन के वृक्ष थे। वहां पर पिचुमद, कोविदार, सरल, सूरदारू, अंगूर, गन्ना, केला, जंबू, बद्री, अक्ष, अभय तथा आमलकी भी थे। उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था, जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद कलहार उत्पल एवं टकटक फूलों से भरा था, जिनमें पर्वत की सुंदरता में वृद्धि हो रही थी। उस उद्यान में पिल्लव कपित्व जंबीर तथा भल्लातक वृक्ष भी थे। मदमत भौरे मधुपान कर रहे थे और अत्यंत मधुर ध्वनि में गान करने वाले पक्षियों की चहचहाहट के साथ वे भी गुनगुना रहे थे। सरोवर में हंसों कारंडवों चक्रावकों सारसों जल मुर्गियों दातयूहों कोयहिष्टियों तथा अन्य चहचहाते पक्षियों के झुंड थे। मछलियों तथा कछुओं के इधर उधर तेजी से गति करने से कमल के फूलों से जो पराग कण गिरे थे उनसे जल सुशोभित था। सरोवर के चारों ओर कदम वेतक नल नीप वंजुलक कुंद कुर्बक अशोक तिरिश कूटज इंगुद कुब्जक स्वर्ण युति नाग पुन्नाग जाति मल्लिका चक्रत जालका तथा माधवी लताएं थी। सरोवर के तट ऐसे वृक्षों से भली भांति अलंकृत थे जो सभी ऋतुओं में फूल तथा फल देने वाले थे। इस तरह पूरा पर्वत भव्य रूप से सजा हुआ था। एक बार हाथियों का अगुआ प्रमुख जो त्रिकुट पर्वत के जंगल में रह रहा था अपनी हथनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकल पड़ा। उसने अनेक पौधों लताओं तथा गुल्मों को उनके चुभने वाले कांटों की परवाह न करते हुए रौंद डाला। उस हाथी की सुगंध पाकर ही सारे अन्य हाथी बाघ तथा अन्य हिंस पशु जैसे सिंह गैंडे सर्प एवं सफेद काले सरब भय से भाग गए। यहां तक कि चमरी हिरन भी भाग निकले। इस हाथी की कृपा से लोमड़ी भेड़िया भैंसे भालू सुअर गोपुच तेही बंदर खरहे हिरन तथा अन्य छोटे पशु जंगल में सर्वत्र विचरण करते रहते थे। वे उससे भयभीत नहीं रहते थे। वह हाथियों का राजा गजपति झुंड के अन्य हाथियों तथा हथनियों से घिरा था और उसके पीछे पीछे हाथी के बच्चे चल रहे थे। वह अपने शरीर के भार से त्रिकुट पर्वत को चारों ओर से कंपा रहा था। उसके पसीना छूट रहा था। उसके मुंह से मद की लार टपक रही थी और उसकी दृष्टि मद से भरी थी। मधु पी पी कर भौरे उसकी सेवा कर रहे थे और वह दूर से ही उन कमल फूलों के रज कणों की सुगंध का अनुभव कर रहा था जो मंद पवन द्वारा उस सरोवर से ले जाई जा रही थी। इस प्रकार प्यास से पीड़ित अपने साथियों से गिरा वह गजपति तुरंत सरोवर के तट पर आया। वह हाथियों का राजा गजेंद्र सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया और अपनी थकान से मुक्त हो गया। तब उसने अपनी सूंड से जी भरकर शीतल स्वच्छ अमृत तुल्य जल पिया जो कमल पुष्पों तथा जल कुमुदिनियों की रज से मिश्रित था। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। उसने अपनी सूंड में सरोवर का पानी भरकर उन सबके ऊपर छिड़का। उसने इस प्रयास में लगने वाले कठिन श्रम की परवाह नहीं की। हे राजन, विधाता की लेख से एक बलिष्ठ घड़ियाल ने, जो हाथी पर क्रुद्ध था, जल के भीतर से ही हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चय ही बलवान था और उसने भाग्य द्वारा प्रेक्षित इस संकट से अपने को छुड़ाने का भरपूर प्रयत्न किया। तत्पश्चात गजेंद्र को उस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नियां अत्यधिक दुखी हुई और चिंगाड़ने लगी। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाही, किंतु घड़ियाल की विपुल शक्ति के कारण वे उसे पीछे से पकड़कर उसको नहीं बचा सके। हे राजन, इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को गतीत गतीत कर 1000 वर्षों तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को देखकर देवता गण अत्यंत चकित थे। तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जल पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है और बंधन में फंसकर परिस्थिति वश असहाय है एवं अपने को संकट से नहीं उबार सकता, तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने बहुत समय तक विचार किया और अंततो घत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके, तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। यह विधाता की इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है, अतएव मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ जो हर एक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव आश्रय प्रदान करते हैं। भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु हैं वे अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। अतएव यद्यपि काल रूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर हर किसी का पीछा कर रहा है और उसे निगलने को उद्यत है, तथापि यदि वह इस सर्प से डरकर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र पर संकट नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।